अगर आप अमेरिकी हैं, तो आपने शायद इनमें से बहुत सी चीजें देखी होंगी और कुछ जगहों पर ये इतनी आम है कि आप इन्हें देख भी नहीं पाते। ये बस बैकग्राउंड में ही घुल मिल जाती है, जैसे पेड़ या स्ट्रीट लाइट। और आपने शायद सही अनुमान लगाया होगा कि ये ट्रैफिक रिकॉर्ड कर रही है। ये आई इमेज रिकग्निशन का इस्तेमाल करके लाइसेंस प्लेट भी रिकॉर्ड और लॉक कर रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वास्तव में आपके स्थानीय पुलिस विभाग या स्थानीय सरकार के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि इन्हें किसी थर्ड पार्टी स्टार्टअप ने लाइसेंस दिया है और आपके सभी वाहनों के ठिकाने को एक थर्ड पार्टी डेटा ब्रोकर द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रमुख रिटेल चेन भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वे आपकी निजी जानकारी, आपकी खरीदारी की आदतों और यहां तक कि आपके स्टोर में व्यवहार के साथ आपके वाहन के ठिकाने का मिलान कर रहे हैं और उनमें से कुछ कानून प्रवर्तन को ये जानकारी दे रहे हैं। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद मुझे इसे तोड़ने का एक तरीका मिल गया है? कोलोराडो का ये परिवार चोरी की गाड़ी में शॉपिंग सेंटर जा रहा था और अगर अत्याधुनिक तकनीक पुलिस को उनके अपराध के बारे में नहीं बताती तो वे बच निकलते।
नहीं, ये वास्तव में एक OCR त्रुटि थी। खैर, न्यू मेक्सिको की यह महिला और उसकी 12 साल की बहन चोरी की गाड़ी से पार्क जा रही थी जब आई तकनीक की मदद से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यह एक और कंप्यूटर विजन त्रुटि थी। खैर, एक और कार चोरी करने वाली महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया। नहीं, ये बस एक गड़बड़ थी। ये स्थिति पूरे देश में होती रहती है। आपके टैक्स के पैसे से स्टार्टअप्स कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आई सुपर पावर किराए पर देते हैं और फिर अगले साल जब ये काम नहीं करता है तो मुकदमे का निपटारा करते हैं। फ्लॉक सेफ्टी एक स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। यह ऐसे सुरक्षा कैमरों को विकसित करने और पट्टे पर देने में माहिर है जिनमें लाइसेंस प्लेट पहचान और वाहन पहचान जैसी आई क्षमताएं होती हैं। और ये सुरक्षा कैमरे डेटाबेस में दर्ज होते हैं जिन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियां, निजी कंपनियां और यहां तक कि आम नागरिक भी एक्सेस और उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार है तो आप इनमें से किसी एक डेटाबेस में लॉग इन होंगे। यह इस तरह काम करता है। तो आप एक फ्लॉक सेफ्टी कैमरा के पास से गुजरते हैं और यह एक इमेज या वीडियो रिकॉर्ड करता है। एक इमेज सेगमेंटेशन मॉडल या ऐसा ही कुछ लाइसेंस प्लेट या कुछ प्रमुख पहचानकर्ताओं जैसे टेल लाइट या रियर विंडो के साथ एक आयत को देखता है। एक बार जब यह पर्याप्त रूप से आश्वस्त हो जाता है कि उसे लाइसेंस प्लेट मिल गई है तो यह इमेज के एक हिस्से को OCR मॉडल या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में भेजता है जो शायद उपभोक्ताओं के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला आई है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग PDF या किसी भी प्रकार के स्वचालित डेटा एंट्री में किया जाता है, जैसे आपके बैंक के ऐप के साथ आपके फोन पर चेक को स्कैन करना और बनाना। इस तरह का आई आमतौर पर विश्वास स्तर की सीमा का उपयोग करता है। इसलिए यदि OCR मॉडल 90% से अधिक आश्वस्त है कि आपकी लाइसेंस प्लेट को सही तरीके से पढ़ा गया है तो जानकारी उस स्थान और समय के साथ सहेज ली जाती है। यह आपके वाहन के मेक और मॉडल को भी वर्गीकृत कर सकता है और यह नोट कर सकता है कि वाहन पर कोई बम्पर स्टिकर या एड ऑन या कॉस्मेटिक क्षति है या नहीं, और यह जानकारी भी उस डेटाबेस में संग्रहित हो जाती है। कानून प्रवर्तन अधिकारी आपके नंबर प्लेट को चेक कर सकता है और हर बार देख सकता है कि आपके वाहन को डेटाबेस में कब टैग किया गया है। इसलिए यदि आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां इस तरह के बहुत सारे कैमरे हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव डालता है जैसे आपकी कार पर गुप्त रूप से एक GPS डिवाइस लगाना। फ्लॉक सेफ्टी व्यवसायों और गृहस्वामियों के संघों को भी सेवा प्रदान करने में प्रसन्न है और वे निजी ग्राहक अक्सर कानून प्रवर्तन को अपने कैमरों से डेटा तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। फिर हॉटलिस्ट है। यदि कानून प्रवर्तन आपको हॉटलिस्ट में डालता है तो हर बार जब फ्लॉक आपको खोजता है तो उन्हें सूचित किया जाता है। तो यह एक तरह से हर दिन पुलिस की निगरानी जैसा है, लेकिन किसी ऐसे नागरिक को निशाना बनाने और ट्रैक करने के लिए न्यायिक वारंट की आवश्यकता के बिना, जिस पर किसी भी तरह के अपराध का संदेह भी नहीं है। तो अब आप पूछ सकते हैं, टेक्सास के कानून प्रवर्तन को अवैध गर्भपात कराने वाली संदिग्ध महिलाओं को राज्य से बाहर ट्रैक करने से रोकने के लिए क्या है? या फिर आप एक ईर्ष्यालु गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को कैसे रोकेंगे जो कानून प्रवर्तन अधिकारी भी है, ताकि वह अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए साथी पर लगातार नजर रखने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल न करे? खैर, दुर्भाग्य से आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि ये उन कई घटनाओं में से सिर्फ दो उदाहरण हैं जो वास्तव में पहले ही हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए फ्लॉक सेफ्टी ने ऑरलैंडो फ्लोरिडा के पास सामान्य अति आक्रामक स्टार्टअप व्यवहार का प्रदर्शन किया है जिसके हम सभी आदी हो चुके हैं। उन्होंने काउंटी को सूचित किए बिना सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 कैमरे लगाए और यह पूरा उद्योग पुलिस विभागों को अपनी चुनी हुई सफलता की कहानियों के साथ बेचता है। अगर हम निगरानी वाले राज्य में नहीं रहते तो डिमेंशिया से पीड़ित ये बूढ़ी औरत कभी नहीं मिलती, या अगर ये सारे कैमरे न होते तो हत्या का ये संदिग्ध कभी सड़कों से नहीं हटाया जाता और वह अभी भी लोगों की हत्या कर रहा होता। अगर लाइसेंस प्लेट रीडर की गलती के कारण एक माँ और उसके छोटे बच्चों को बंदूक की नोक पर न रखा गया होता तो उस परिवार को कोलोराडो के ऑरोरा के करदाताओं से $1.90 मिलियन का समझौता कभी नहीं मिलता। अजीब बात है, मुझे उनके किसी भी सेल्स डेक में ऐसा उदाहरण नहीं मिला। मिला। मैंने जितने भी एग्रीमेंट देखे हैं, उनमें से हर एक में पुलिस विभाग या स्थानीय सरकार कैमरे की मालिक नहीं होती, लेकिन उन्हें लगाने का खर्च वहन करती है, फिर उन्हें सालाना सब्सक्रिप्शन फीस पर किराए पर देती है, और आमतौर पर यह प्रति कैमरा प्रति वर्ष $2,000 से $3,000 के बीच होता है। लेकिन हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुछ पुलिस विभागों के बजट पर दबाव पड़ा है। इन सभी एग्रीमेंट में फ्लॉक सेफ्टी की दायित्व नीति बेहद सख्त है, और अगर कुछ गलत हो जाता है या कोई उपकरण या डेटा त्रुटि जांच को गुमराह करती है, तो यह उन्हें लगभग सभी दावों से बचाती है। और इस एग्रीमेंट का सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि पुलिस विभाग को 911 पर कॉल करने और इमरजेंसी की स्थिति में फ्लॉक सेफ्टी सेवाओं पर निर्भर न रहने के लिए कहा गया है। अरे नहीं, नागरिक समुदाय, पुलिस विभाग, निजी व्यवसाय और व्यक्ति किसी भी फ्लॉक के आईपी या हार्डवेयर को बेचने, लीज पर देने, नीलामी करने या अन्यथा स्वामित्व हस्तांतरित करने के हकदार नहीं है। किसी भी समय आपको इसे डिकम्पाइल, डिसअसेंबल, रिवर्स इंजीनियरिंग, मॉडिफाई, बदलाव, छेड़छाड़ या रिपेयर करने की अनुमति नहीं है। इस वीडियो में आगे मैं कुछ ALPR कैमरों को डिसअसेंबल और रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन फ्लॉक को नहीं। अगर मेरे पास फ्लॉक के कुछ हार्डवेयर बॉक्स में रखे होते, तो मेरे वकील ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं आपको इसे दिखाता, तो ये पूरा वीडियो खतरे में पड़ जाता। इस तरह के बड़े पैमाने पर काम करने की एक बड़ी वजह यह है कि इस तरह की कंपनियों का बिजनेस मॉडल वाकई बहुत शानदार होता है। वे खुद को पब्लिक सेफ्टी सर्विस के तौर पर मार्केट करते हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक का लाइसेंस देती है, लेकिन लाइसेंस प्लेट रीडर और सिक्योरिटी कैमरे दशकों से मौजूद हैं। ब्लॉक सेफ्टी और उनके प्रतिस्पर्धी डेटा ब्रोकर हैं। कोई शहर, पुलिस विभाग, व्यवसाय या गृहस्वामी संघ उनके कैमरे उधार लेते हैं और फिर वे उसी लाइसेंसिंग पेवॉल स्कीम के तहत उस डेटा को दूसरे क्लाइंट या ग्राहकों के लिए एक्सेस करने का अधिकार रखते हैं। डेटा ब्रोकर्स और डेटा ब्रिक्स, फाइवर, स्केल AI और गोल्डन जैसे बड़े डेटा स्टार्टअप्स के लिए पसंदीदा VC एंड्रे होरोविट्स हैं। उन्होंने फ्लॉक सेफ्टी में लगभग $500 मिलियन का निवेश किया है। कुछ महीने पहले ही इसमें $275 मिलियन और जोड़े हैं। ये डेटा ब्रोकर के नंबर हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहचानी जाने वाली होम सिक्योरिटी कंपनी और ब्रांड ADT 1969 में पब्लिक हुई और इसका मार्केट कैप $6.8 बिलियन है। और यह मार्केट कैप फ्लॉक सेफ्टी के हालिया फर्स्ट सीरीज वैल्यूएशन के लगभग $8 बिलियन से कम है। और यह बताना जरूरी है कि फ्लॉक सेफ्टी और एंड्रे होरोविट्स ने लॉबिंग में कुल मिलाकर $92,680,000 खर्च किए हैं, और उस लॉबिंग का अधिकांश हिस्सा पिछले साल में हुआ था। हो सकता है कि आप एक कानून प्रवर्तन अधिकारी हो और फ्लॉक सेफ्टी ने मामलों को सुझाने में आपकी मदद की हो, या शायद आप सोचते हैं कि अपराध में गिरावट के बारे में एक कमजोर और पुष्ट दावे के लिए उन करोड़ों करदाताओं की लगातार निगरानी और ट्रैकिंग करना उचित है जो अपराधी नहीं हैं। और वे छोटी छोटी गड़बड़ियां जिनकी वजह से छोटे बच्चों को पार्किंग स्थल में गर्म दामर पर मुंह के बल गिरा दिया जाता है, वे समाज के उस ऑमलेट में फूटे हुए अंडे के समान है जिसे बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप इससे सहमत हैं और यह आपका दृष्टिकोण है, तो ठीक है, मैं आपसे पूरी तरह असहमत हूं। लेकिन यह एक ऐसी बातचीत है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह सब हर किसी के लिए और भी बदतर होने वाला है, सिवाय उन अरबपतियों के जो करदाताओं से धन ऐंठने का काम कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अभी भी स्टूडियो में हूं। हमने अभी अभी अपने Q1 उत्पाद लॉन्च को पूरा किया है। उंगलियां अभी भी थोड़ी कांप रही हैं। फ्लॉक नोवर आपराधिक जांच के खेल को बदलने जा रहा है। मैंने बहुत से प्रमुखों से सुना है कि उनके पास ये प्रणाली और वह प्रणाली और वह प्रणाली है। वे जानते हैं कि उनके पास डेटा है, लेकिन उनके विश्लेषकों को केस बनाने में घंटों लग जाते हैं। और अब फ्लॉक नोवर के साथ एक क्लिक से एक केस सॉल्व हो जाता है। फ्लॉक नोवर एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो इस रिकॉर्डिंग के समय बीटा में था, और इसमें कंप्यूटर एड डिस्पैच, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वीडियो सर्विलांस, ऑटोमेटेड लाइसेंस प्लेट रीडर डेटा और फ्लॉक सेफ्टी द्वारा प्राप्त थर्ड पार्टी डेटा शामिल है। आप पूछ रहे हैं कि थर्ड पार्टी डेटा क्या है? वे पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं, लेकिन 404 मीडिया ने यही सवाल पूछा और पाया कि फ्लॉक नोवर बड़े पैमाने पर हैक और सुरक्षा उल्लंघनों से लीक और बेचे गए डेटा का इस्तेमाल कर रहा था। और उस कहानी के सामने आने के बाद फ्लॉक ने एक घोषणा की कि अब वो अवैध रूप से चुराए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं कर रहा है। हम में से अधिकांश लोगों को वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कम से कम यह नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है कि हमारा डेटा हमसे लिया जा रहा है। जैसे, क्या ये वास्तव में इतनी बड़ी बात है कि पिंटरेस्ट पर आपकी गतिविधि को एक गुमनाम खाते के तहत संग्रहित और विश्लेषण और बेचा जा रहा है? खैर, ये तब बहुत बड़ी बात हो जाती है जब इसे अन्य डेटा के साथ जोड़ा जाता है और इतना गुमनाम नहीं रहता है। और जब आपकी हेल्थ प्रश्नावली की जानकारी बेटा हेल्प पर फेसबुक को बेची जाती है, जहां आपने 10 साल पहले बार से कई तस्वीरें पोस्ट की थी, और फिर वो सब एक डेटा ब्रोकर द्वारा आपके ट्रैक किए गए और लॉक किए गए खराब ड्राइविंग आदतों के साथ बंडल हो जाता है जिसे आपके वाहन निर्माता ने बेचा था। हाँ, ये भी एक बात है। अंदाजा लगाइए, क्या ये सब इस बात को समझा सकता है कि आपकी कार का बीमा आपकी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में दोगुना क्यों है? या यह इस बात को समझा सकता है कि आपको लोन पर अच्छी ब्याज दर क्यों नहीं मिल पाती है? और अब खासकर 2025 में जहां एक दशक पहले पोस्ट की गई किसी चीज के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और निर्वासित किया जा सकता है। मेरा कहना है, डेटा गोपनीयता वास्तव में तब तक बड़ी बात नहीं लगती जब तक कि वो वास्तव में हो। कुछ राज्यों में इस संबंध में विभिन्न कानून हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि जिन कुछ मामलों में वे पकड़े जाते हैं उनमें जुर्माना या समझौता आपके तीसरे पक्ष के डेटा को खरीदने और बेचने से होने वाली आय का एक छोटा सा अंश होता है। यदि कोई बड़ा रिटेलर या फास्ट फूड चेन फ्लॉक सेफ्टी का उपयोग नहीं कर रहा है तो वे संभवतः किसी अन्य प्रकार के स्वचालित लाइसेंस प्लेट रीडर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन दरवाजों के अंदर जाते हैं तो हे भगवान, आइए वॉलमार्ट की कॉर्पोरेट गोपनीयता नीति को एक उदाहरण के रूप में लें। वे आपके व्यक्तिगत पहचानकर्ता, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पता, आपका ईमेल, आपका ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, आपका हस्ताक्षर, आपके फोन या स्मार्ट वॉच के मैक पते जैसे डिवाइस पहचानकर्ता लॉक कर रहे हैं। वे आपकी आयु, लिंग, नागरिकता, जाति, वैवाहिक स्थिति, घरेलू आय, शिक्षा, बेरोजगारी की जानकारी, पारिवारिक स्वास्थ्य, बच्चों की संख्या, क्रेडिट कार्ड नंबर और अन्य भुगतान जानकारी, भौगोलिक स्थान का इतिहास, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और यदि ज्ञात हो तो पृष्ठभूमि की जांच और आपराधिक दोष सिद्धि का पता लगा रहे हैं। ओह रुकिए, और मैं अभी तक डरावने हिस्से तक भी नहीं पहुंचा हूं। आपके खरीदारी पैटर्न, बुद्धिमत्ता और योग्यता से आपके व्यवहार और प्राथमिकताओं के निष्कर्ष, और वे इन सभी को तीसरे पक्ष के साथ साझा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिसमें शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं है, आपने अनुमान लगाया। ये बताया गया है कि पुलिस विभाग पूछताछ कर रहे हैं और आइस के साथ फ्लॉक सेफ्टी का डेटा साझा कर रहे हैं। होम डिपो और लो के कुछ लोकेशन फ्लॉक सेफ्टी के ग्राहक भी हैं और वे फ्लॉक सेफ्टी का डेटा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शेयर करते हैं। यह मान लेना सही होगा कि होम डिपो और लो के लोकेशन पर होने वाले कुछ इमिग्रेशन रेट इस डेटा के हनीपोर्ट से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए जब कोई अप्रवासी काम से पहले कुछ निर्माण सामग्री लेता है तो स्टोर उसके नंबर प्लेट और गाड़ी की पहचान का डेटा फ्लॉक सेफ्टी को भेज देगा। इससे हॉटलिस्ट में अलर्ट आ जाएगा और बस ऐसे ही नकाबपोश लोग आते हैं और वेनेजुएला के उस दिहाड़ी मजदूर को उठा ले जाते हैं जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे एल साल्वाडोर के जेल कैंप में भेज देते हैं। जैसे कि तुम लोग औजार क्यों नहीं बेच सकते? इसलिए हमारे पास हर जगह ये डरावने आई कैमरे हैं जो हर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति को सही साबित करते हैं और हमारे वाहनों की हर हरकत को पुलिस, रिटेलर और यहाँ तक कि गेटेड कम्युनिटी के लिए रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे रिटेलर हमारे बारे में एडवांस पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं जिसे बाद में डेटा ब्रोकर को बेचा जाता है और हमारी इंटरनेट शॉपिंग, ब्राउजिंग और सोशल मीडिया एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाता है। और अब कानून प्रवर्तन एजेंसियां, डेटा ब्रोकर ये सब खरीद रही हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम सभी को जानना और विचार करना चाहिए। अगर इस डेटाबेस ब्रोकरेज थिएटर में हर एक एक्टर नियमों के अनुसार काम कर रहा हो और हर एक कानून का पालन कर रहा हो और नैतिकता से काम कर रहा हो तो भी आपका डेटा उतना ही सुरक्षित है जितना कि सबसे कमजोर सुरक्षा नीतियों वाला डेटाबेस या वह एक कर्मचारी जो फिशिंग ईमेल के झांसे में आ जाता है। अगर हम केवल 2024 में ही डेटा उल्लंघनों की गिनती करें जो औपचारिक रूप से रिपोर्ट किए गए थे तो ये संख्या 10,000 से अधिक घटनाओं को प्रभावित करती है जिससे 4.2 बिलियन से अधिक रिकॉर्ड प्रभावित हुए हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारे विधायक टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाकर हमारी मदद करने आ रहे हैं। क्या मैंने सही सुना? और इस समय ये कोई मायने नहीं रखता। 2025 में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर बहस करना एक घर के जले हुए अवशेषों पर खड़े होने और यह बहस करने जैसा है कि आप रसोई में किस तरह का अग्निशामक यंत्र लगाने जा रहे हैं। यह अगला खंड बड़े डेटा या खुदरा विक्रेताओं के बारे में नहीं है। हम आपके टैक्स डॉलर से चुकाए गए डेटा माइनिंग पर वापस लौटेंगे और देखेंगे कि यह कितना असुरक्षित है और हम इससे खुद को बचाने के कुछ तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम तकनीकी रूप से जानेंगे कि ALPR कैमरे कैसे काम करते हैं और कुछ हार्डवेयर कमजोरियों की जांच करेंगे, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे पता चला है, फ्लॉक सुरक्षा कैमरों तक ब्लूटूथ के जरिए पहुंचा जा सकता है और पूरी तरह से अलग विषय पर जाए बिना सुरक्षा ब्लूटूथ की ताकत नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, फ्लॉक सिक्योरिटी की तारीफ की जाए तो ऐसा लगता है कि ब्लूटूथ सिर्फ कैमरे और ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में हार्डवेयर और स्टेटस की जानकारी रिले कर रहा है। कैमरा सिस्टम में एक वाईफाई रेडियो भी है जो WPA2 एन्क्रिप्शन के साथ राउटर की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे उपभोक्ता उत्पाद अभी भी करते हैं। हालांकि यह 20 साल पुरानी तकनीक है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। उन सबसे बड़ी खामियों में से एक हैंडशेक में है। अगर आप आईफोन पर पासकोड का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो डिवाइस टाइम आउट होने से पहले आपके पास लगभग 6 बार कोशिश करने का मौका होता है और आपको दोबारा कोशिश करने से पहले इंतजार करना पड़ता है, और यह किसी भी स्मार्टफोन या जीमेल या किसी भी आधुनिक लॉगिन पेज के लिए समान या बहुत समान है। WPA2 वाईफाई के साथ एक प्री शेयर्ड पासवर्ड की होती है और एक हमलावर अपने डिवाइस पर हैंडशेक को कैप्चर कर सकता है ताकि वे उस पर अपना GPU चिपका सकें। और अगर सब कुछ अपडेट है और ठीक से काम कर रहा है और राउटर पर कोई अन्य सुरक्षा खामियां नहीं है तो एक आधुनिक गेमिंग GPU 3 घंटे से कम समय में 8 अंकों की कुंजी को क्रैक कर सकता है। अगर आपका वाईफाई पासवर्ड एक ज्ञात शब्द है जो पासवर्ड डिक्शनरी में होगा तो मैं इसे लगभग 60 सेकंड दूंगा। कुछ अन्य विक्रेताओं और सेवाओं के साथ आपको वास्तव में कुछ भी क्रैक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने RTSP वीडियो फीड को ठीक से सुरक्षित करने में विफल रहे। और कुछ ही घंटों में कुछ विशेष खोज इंजनों के साथ मैं 2 दर्जन से अधिक ट्रैफिक कैमरों से लाइव फीड तक पहुंचने में कामयाब रहा। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मैंने जिन दो छोटे शहरों का ऑडिट किया वहां अगर एक कैमरा सुरक्षित नहीं था तो कोई भी कैमरा सुरक्षित नहीं था। इससे कोई भी शहर के हर एक वाहन को बिना देखे या कोड लिखे ट्रैक कर सकता था। एक और परेशान करने वाला उदाहरण है हिकविजन, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईपी कैमरा कंपनी है। वे हर तरह के कैमरे बनाते हैं जिनमें से कई में ALPR तकनीक होती है और इन्हें पुलिस विभागों के लिए बेचा जाता है। 2022 में हैकर्स न केवल फीड देखने में सक्षम थे बल्कि 80,000 से ज्यादा कैमरों में इस्तेमाल किए गए फर्मवेयर का फायदा उठाकर उन्हें दूर से ही कोड निष्पादित करने में सक्षम थे। और फिर पिछले साल रूसी सेना ने यूक्रेन में हिकविजन कैमरों से समझौता किया ताकि कीव पर हवाई हमले की योजना बनाने और यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। वास्तव में अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आप GitHub पर हिकविजन कैमरों के लिए एक एक्सप्लॉइट डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको फीड देखने स्नैपशॉट प्राप्त करने और उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल निकालने की अनुमति देता है। फिर आपके पास वेरता है जो एक बड़ी सुरक्षा कैमरा कंपनी है जिसके चेयरमैन ने ग्राहकों को एक शिकारी सदस्यता मॉडल में बंद करने के बारे में शेखी बघारी है। इसमें एक हार्डवेयर घटक और एक लाइसेंसिंग घटक है। अब लाइसेंस, आपने एक साल का लाइसेंस खरीदा होगा लेकिन आपने हार्डवेयर को अपनी छत पर बोल्ट कर दिया है तो जैसे आप इसे हटा नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, जेल, पुलिस विभाग आदि में उनके कई ग्राहक अधिक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए जब उनके 150,000 से अधिक कैमरों में से हर एक को एक कॉर्पोरेट व्यवस्थापक खाते के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के इंटरनेट पर सार्वजनिक होने के कारण हैक कर लिया गया तो हैकर्स को न केवल निजी वीडियो फीड तक पहुंच प्राप्त हो गई बल्कि वे नेटवर्क भी जिनसे वे जुड़े थे और वे उन कैमरों के अभिलेखागार तक भी पहुंचने में सक्षम थे, उन क्लिप्स को जो उन ग्राहकों द्वारा सहेजे गए थे। अगर किसी तकनीकी चीज के बारे में मुझे पूरी तरह से पागल बनाने का एक तरीका है तो वह ये है कि मुझे ये बताया जाए कि मुझे इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं है। और सुरक्षा कैमरा उद्योग की तुलना में तकनीकी विश्लेषण या पेन परीक्षण के बारे में कुछ उद्योग अधिक सतर्क हैं। कोई यह मान सकता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नहीं चाहते कि आम जनता उस उपकरण के तकनीकी कार्य का पता लगाए जिस पर लोग सुरक्षा के लिए निर्भर हैं और ग्राहकों को कड़े समझौतों में बाध्य करके या किसी को भी डिसअसेंबल करने का वीडियो पोस्ट करने पर सहायता करने से रोककर वे आपको सुरक्षित बना रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के घर, व्यवसाय या नागरिक सुरक्षा उपकरण या समाधान खरीदने के बाजार में हैं, तो आपको उच्च स्तर के खुलेपन और पारदर्शिता वाले समाधान की तलाश करनी चाहिए। शायद सबसे बुरी चीज जो एक बेवकूफ YouTube चैनल दुर्भावनापूर्ण हैकर्स के लिए कर सकता है वह है सुरक्षा कमजोरियों की रिपोर्ट करने वाली सामग्री को सार्वजनिक करना, क्योंकि यह निर्माताओं को उन कमजोरियों को तुरंत ठीक करने या प्रतिस्पर्धियों के हाथों ग्राहक होने का खतरा पैदा करता है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत पुलिस कारों पर लगे सबसे लोकप्रिय लाइसेंस प्लेट पहचान कैमरों में से एक को प्राप्त करने से की थी जिसे विजिलेंस सॉल्यूशंस द्वारा बनाया गया था। यह एक कठिन लगने वाला नाम है जिसका उपयोग मोटोरोला कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विपणन करने की कोशिश करते समय करता है। ऐसा लगता है कि मोटोरोला ने लाइसेंस प्लेट पढ़ने वाले हिस्से की तुलना में इसकी कार्यक्षमता को कमजोर बनाने और इसे बेतुका और मालिकाना बनाने में ज्यादा मेहनत की है। और विडंबना यह है कि इसमें एक माइक्रो SD कार्ड था जिसमें अनएन्क्रिप्टेड डेटा था। हाँ, बहुत अच्छा नहीं। उनमें से ज्यादातर में दो अलग अलग कैमरा सेंसर होते हैं, एक दिन के लिए और दूसरा रात के लिए, और फिर इंफ्रारेड लाइट एमिटर का एक गुच्छा होता है। इसलिए उदाहरण के लिए यदि कोई पुलिस अधिकारी रात में किसी वाहन के पीछे गाड़ी चला रहा है तो यह एक इंफ्रारेड फ्लैश भेजेगा और फिर बहुत तेज फ्रेम दर पर एक तस्वीर लेगा। इसलिए यह हर जगह कम उजागर होता है सिवाय लाइसेंस प्लेट से इंफ्रारेड परावर्तन के। और ध्यान रखें कि हमारी मानवीय आंखें इंफ्रारेड प्रकाश को देखने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप या पुलिस अधिकारी शायद ये भी नहीं जानते कि एक फ्लैश हो रहा है। मैं इसे बहुत जल्दी प्रदर्शित करूंगा। यहाँ बिना इंफ्रारेड फ्लैश के एक लंबा एक्सपोजर है, यहाँ इंफ्रारेड फ्लैश के साथ एक लंबा एक्सपोजर है, यहाँ इंफ्रारेड फ्लैश के साथ एक बहुत तेज एक्सपोजर है। खैर, इस चैनल के वकील ने कैमरे को चालू करने और इस वीडियो में इसका इस्तेमाल करने की जटिल कानूनी प्रक्रिया पर चिंता जताई है ये देखते हुए कि मैंने इसे कैसे हासिल किया। और नहीं, मैंने इसे किसी पुलिस कार से नहीं चुराया, इसलिए मैंने इसे अलग किया और इसके हर चिप का विश्लेषण किया और फिर दिन के कैमरे के समान कार्यक्षमता वाला कुछ बनाया ताकि देख सकूं कि क्या मैं अपने ट्रक पर एक अच्छा लाइसेंस प्लेट रीडर लगा सकता हूं, जैसा कि पुलिस के पास है। और फिर सभी डेटा को किसी बाहरी कंप्यूटर सर्वर पर भेजने के बजाय मैंने सोचा कि मैं सब कुछ एक स्लीक डिवाइस में करने की कोशिश कर सकता हूं जिसे मैंने एक साथ बनाया है। मैंने 7 इंच के टच स्क्रीन डिस्प्ले के पीछे एक रास्पबेरी पाई 5 लगाया, फिर दिन के कैमरे के समान स्पेक्स वाले एक USB कैमरा मॉड्यूल का उपयोग किया। जैसा कि पहले बताया गया था, व्यवसाय का पहला क्रम छवि विभाजन या लाइसेंस प्लेट को स्वयं खोजना है, और यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था जिसमें सबसे अधिक बदलाव की आवश्यकता थी क्योंकि आयत हर जगह है। इस परियोजना का OCR या प्लेट पढ़ने वाला हिस्सा ठीक काम कर गया, लेकिन अगर यह मेरा पुलिस विभाग होता और मैं उसका मुखिया होता तो मैं बेहतर की मांग करता। और आखिरकार ये सब करने का क्या मतलब है अगर हम नागरिकों को इस तरह के उपकरणों से लॉग इन करने से रोकने के लिए तकनीक का उपयोग करने का भविष्य प्रूफ तरीका नहीं बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमें कुछ और आधुनिक आई की आवश्यकता है। आकार पहचान मॉडल की लगभग अंतहीन आपूर्ति में कई लाइसेंस प्लेट रीडर मॉडल उपलब्ध हैं। YOLO या आप केवल एक बार देखते हैं समूह में सबसे सटीक प्रदर्शन करता है और यह कुछ लोकप्रिय सार्वजनिक सुरक्षा डेटा ब्रोकर कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खुले ALPR आधारित मॉडल से बहुत बेहतर काम कर रहा था, लेकिन योलो भी बहुत अधिक बिजली की खपत करता है। इसलिए मुझे अपने छोटे पुलिस कंप्यूटर में 26 टॉप के साथ एक हेलो आई बोर्ड जोड़ना पड़ा, और फिर मैंने एक ऐसे कैमरे पर स्विच करने का फैसला किया जो सीधे पाई बोर्ड के साथ दोहरे चैनलों के साथ संवाद करता था, और इस तरह मुझे USB नियंत्रक के ओवरहेड से निपटना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि यह बहुत ही कठिन है, लेकिन देखिए, हमारे पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंप्यूटर विजन सिस्टम है जो कानून प्रवर्तन के लिए बाजार में मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक सटीक है, और अगर आप ट्रायल और एरर को छोड़ दें तो इसकी कीमत शायद मुझे करीब $250 पड़ी होगी, और इससे भी बेहतर यह है कि मैं भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए शायद एक सटीक कंप्यूटर विजन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता हूं। या हो सकता है कि जब मेरी कोई मुर्गी भाग जाए तो यह मुझे सीधे बता दे। लेकिन इस बीच हम इसे रिकॉर्ड स्काउट के जरिए पंप करने जा रहे हैं, जो फ्लॉक सेफ्टी जैसी ही एक कंपनी है जो पुलिस को मेरा डेटा शेयर करने का विकल्प भी देती है। ये बेहद सुरक्षित शेयरिंग नेटवर्क एजेंसियों को रेको इकोसिस्टम में किसी भी अन्य भागीदार के डेटा और रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिसमें हमारे रेको स्काउट होम पैकेज के आवासीय सदस्य भी शामिल हैं। इस बारे में सोचें, अब जब मैं इसे जोर से कह रहा हूं, तो यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा कमजोरी भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैं बस एक बैंक लूट सकता हूं और फिर इनपुट डेटा को एक RTSP स्ट्रीम के साथ सप्लाई कर सकता हूं, जो मुझे बैंक से 400 मील दूर मेरी गाड़ी चलाते हुए टैग करेगा। लेकिन खैर, ठीक है, तो बेन के टॉप मॉडल आई मॉडल में आपका स्वागत है। हमारे पास हमारे 4 लाइसेंस प्लेट और वाहन ट्रैकिंग परीक्षण विषयों के लिए रेको योलो V11 प्लेट पहचानकर्ता और क्लासिक ओपन ALPR है, और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक कस्टम लाइसेंस प्लेट भी बनाई है जो कि मैं अपने DJ का नाम भी रखूंगा।
बेन जॉर्डन एक सीधा तरीका अपना रहे हैं, वो इसको एडवर्सरियल नॉइस नाम की चीज से भ्रमित करना चाहते हैं।
आई मॉडल को भ्रमित करना और उन्हें ट्रैक को दोहराने से रोकना। अगर आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो आपने मेरा एक प्रोजेक्ट देखा होगा जिसमें म्यूजिक फाइलों को ऐसे नॉइस के साथ एनकोड किया जाता है जिसे आई सुन सकता है लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। यह इंस्ट्रूमेंट और जॉनर क्लासिफायर को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है और आई को पूरी तरह से बकवास सुनाई देती है। उस प्रोजेक्ट का पूरा उद्देश्य कुछ ऐसा विकसित करना था जो आई कंपनियों को मेरे और दूसरों के एल्बम को स्क्रैप करने और डेटा को आई म्यूजिक सर्विस के रूप में फिर से बेचने से रोक सके, और अब तक एल्गोरिथम बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें सुधार हो रहा है। और मैं इस तरह की चीजें इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि जिन लोगों को हमने अपनी बौद्धिक संपदा और अपने निजता अधिकारों की रक्षा के लिए चुना है, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इससे किसी भी तरह का बचाव चाहते हैं तो हमें अपनी आस्तीनें चढ़ानी होंगी और खुद का बचाव करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। कई बार इस तरह के वीडियो विवादित हो जाते हैं क्योंकि एडवर्सरियल नॉइस अटैक आई इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी और महंगी समस्या बन सकते हैं, खासकर तब जब इस इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा पहले से मौजूद आई मॉडल पर काम करते हुए फीचर हंटिंग में लगा रहता है। उदाहरण के लिए, आप आई मॉडल से यह नहीं पूछ सकते कि वह चेहरे को कैसे पहचानता है क्योंकि उसके पास इंसानी दिमाग या आंखें नहीं होती हैं और न ही उसके पास ऐसी कोई चेतना आधारित बुद्धि होती है जो किसी व्यक्ति को पहचान सके। जब कोई आई मॉडल कोई इमेज या गाना या लाइसेंस प्लेट पहचान लेता है तो ये ब्लैक बॉक्स समस्या कोई समस्या नहीं होती, ये बस काम करता है। लेकिन जब कोई ऐसा अटैक करता है जिससे मॉडल काम करना बंद कर देता है तो आप उसे खोलकर कुछ चीजें ठीक नहीं कर सकते। कुछ साल पहले नाइट शेड नाम की एक चीज के साथ कुछ तकनीक प्रेमी कलाकारों ने इमेज में अदृश्य नॉइस डालकर अपने आर्टवर्क में जहर घोलने की कोशिश की थी, जिससे इमेज जनरेट करने के लिए प्रशिक्षित मॉडल भ्रमित हो गए, और शुरुआत में ये बहुत अच्छा काम कर गया। आई बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये पता लगा लिया है कि तस्वीरों में थोड़ा धुंधलापन लाकर और फिर उन तस्वीरों को और भी स्पष्ट बनाने के लिए एक और आई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके वे अधिकांश भ्रामक शोर को कर सकते हैं। ये समस्या का कोई बहुत अच्छा समाधान या इलाज नहीं है, यह एक पट्टी की तरह है क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो में इन बदलावों के कारण अब इमेज मॉडल को प्रशिक्षित करने में ज्यादा समय लगता है और खर्च भी ज्यादा होता है, और यह पट्टी लाइसेंस प्लेट रीडर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑप्टिकल कैरेक्टर रिग्निशन के लिए बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि इस तकनीक का पूरा उद्देश्य तस्वीरों से टेक्स्ट को सही ढंग से आउटपुट करना है, न कि अमूर्त लाइसेंस प्लेट फोटो को तैयार करना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहां क्या करने जा रहे हैं। मेरे पास एक लाइसेंस प्लेट डेटाबेस है और मैं एक कार पर एक प्लेट लगाकर 1001 जैसी ट्रैफिक तस्वीरें बनाता हूं। अगर दोनों मॉडल किसी लाइसेंस प्लेट को पहचान ही नहीं पाते हैं, यानी कि वो प्लेट या आयत को देख ही नहीं पाते हैं, तो वह क्लास हमें चली जाती है। अगर दोनों मॉडल लाइसेंस प्लेट को पहचान लेते हैं लेकिन प्लेट की जानकारी गलत हो जाती है तो वह क्लास B में चली जाती है। फिर अगर कोई भी मॉडल उसे सही से पहचान लेता है और पढ़ लेता है तो वह क्लास C में चली जाती है, जो कि एक कंट्रोल ग्रुप है। फिर मैं कई बार अलग अलग लाइसेंस प्लेट के साथ ऐसा करता हूं और एक नए मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए एक मजबूत डेटा सेट तैयार करता हूं, जिसका काम अमूर्त अदृश्य लाइसेंस प्लेट ओवले पैटर्न तैयार करना होता है जिसे इंसान पहचान नहीं पाते और लाइसेंस प्लेट पहचान प्रणाली को पूरी तरह से बेकार कर देते हैं। इसलिए मैंने प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को GitHub पर डाल दिया है, और एक बार जब आप प्रोसेसिंग इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है और कोड में ही सब कुछ समझाया गया होता है। एक बार जब आप सब कुछ सही से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह की बहुत सारी इमेज होंगी जहां आपकी प्लेट पर छोटे छोटे नॉइस होंगे। कुछ दूसरों की तुलना में कम या ज्यादा स्पष्ट होंगे। अब हमें उन इमेज को टेस्ट करने की जरूरत है और मैंने ऐसा करने के लिए पाइथन का एक परीक्षण स्थल बनाया है। तो एक बार जब आपके GPU का उपयोग करने वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है और आप स्क्रिप्ट चलाते हैं तो यह एक छोटा सा डायलॉग खोलेगा जहां आप एक फोल्डर चुनेंगे। ये फोल्डर में मौजूद हर एक इमेज को देखेगा, फिर यह एक नया फोल्डर बनाएगा और उसे इमेज से भर देगा जो आपको बताएगा कि उसने लाइसेंस प्लेट कहाँ पाई और उसे क्या लगता है और उसका कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या है। हमारे पास मूल के साथ PU5000 है, हमारे पास एक परेशान के साथ MU5000 है, हमारे पास PDQ50954D5000PO5D है और फिर मुझे इनमें से कुछ में वास्तव में दिलचस्पी है कि इसने एक प्लेट का पता ही नहीं लगाया। किसी तरह शोर पैटर्न ने वास्तव में एक वाहन पर एक आयत का पता लगाने वाले छवि विभाजन मॉडल को परेशान किया। और अगर हम ये पता लगा सके कि कौन सा पैटर्न छवि विभाजन को तोड़ रहा है, जैसे कि लाइसेंस प्लेट का पता लगाना, तो यह संभव है कि आपके पास केवल एक लाइसेंस प्लेट होल्डर हो सकता है जो प्लेट को बिल्कुल भी बंद नहीं करता है। इससे लाइसेंस प्लेट रीडर में आई द्वारा इसे पढ़ने की संभावना बहुत कम हो सकती है। ओह, और यहाँ मेरा छोटा सा पाइथन ऐप भी सारे डेटा को CSV फाइल में आउटपुट करता है ताकि आप एक बार में अपने सामने मौजूद सारे डेटा का विश्लेषण कर सकें। अब इन प्रोटोटाइप के साथ वास्तविक दुनिया में इसका परीक्षण करने का समय आ गया था। मैंने सोचा कि मेरे PU5000 लाइसेंस प्लेट के लिए पारदर्शी चिपकने वाली शीट पर शोर को प्रिंट करना मजेदार होगा। ये पैटर्न का परीक्षण करने का एक आसान तरीका है और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप वास्तव में अपनी कार पर लगाकर सार्वजनिक सड़कों पर चलाना चाहेंगे जब तक कि आपको जेल में अपने दोस्तों की याद न आ जाए। हे अधिकारी, यह मेरी सभी ऑफ रोडिंग की वजह से बस थोड़ी सी कीचड़ है। 12 मील प्रति घंटा, मैं निश्चित रूप से इन कैमरों को एक सॉफ्ट बॉल फेंक रहा हूं। चलो एक को भीड़भाड़ वाली पार्किंग स्थल की गति पर करते हैं। मेरा मतलब है, ये कैमरे के ठीक सामने टेक्स्ट रखने जैसा है। यह एक सामान्य लाइसेंस प्लेट जैसा दिखता है। इनमें से कुछ ALPR मॉडल दिखने में उतने दिलचस्प नहीं है जितने दूसरे, इसलिए केवल एक बैश टर्मिनल स्क्रॉलिंग टेक्स्ट दिखाने के बजाय हम उन लोगों के फुटेज के साथ रहेंगे जहां मैं लाइव वीडियो पंप कर सकता हूं और वास्तविक समय के परिणाम प्राप्त कर सकता हूं। तो बिना किसी प्रतिकूल शोर के, सिर्फ कच्ची लाइसेंस प्लेट के साथ इसने PU5000 का पता लगाया। ये प्रतिकूल शोर परत है और यह निश्चित रूप से काफी भ्रमित करने वाला है और यह किसी प्लेट को पंजीकृत करने के लिए विश्वास सीमा को पार नहीं कर पाता है। मैंने बैंड 1 प्लेट की कोशिश की क्योंकि यह एक ऐसी शैली है जिसका उपयोग 30 या 40 वर्षों से नहीं किया गया है और इसमें लाल रंग का पार्ट है और यह उस शैली से काफी अलग है जिस पर हम शुरू में काले शोर के साथ हमला करने की कोशिश कर रहे थे और यह निश्चित रूप से इसे काफी भ्रमित करता है। ठीक है, ये YOLO V8 है। वाह, उनमें से सभी परीक्षण में पास नहीं हुए जो कि पूरी तरह से अपेक्षित था, लेकिन उनमें से बहुत से पास हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं इनमें से कुछ को एक प्लेट पर स्क्रीन प्रिंट करके अपनी गाड़ी पर चिपका दूं तो मैं ट्रैफिक कैमरा निंजा बन जाऊंगा। और फिर से ये शायद वैसे भी सड़क पर चलने योग्य नहीं है और अंतिम मॉडल के लिए सिर्फ प्रशिक्षण डेटा है जो आदर्श रूप से मानव आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य होगा और किसी भी तरह से लाइसेंस प्लेट को बाधित नहीं करेगा। जब मैंने हार्मनी क्लोक के बारे में वीडियो बनाया और जब मैंने अपने आई म्यूजिक डिफेंस एल्गोरिथम पॉइजनिफाई को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत से लोगों ने मुझसे एक यूजर फ्रेंडली या वेबसाइट के बारे में पूछा जहां वे अपने म्यूजिक पर इसका इस्तेमाल कर सकें। मुझे VC मिले जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे और कंपनियां इसे एक्सक्लूसिवली अपने पास रखना चाहती थी और मैं इस उत्साह को देखकर हैरान तो हूं ही लेकिन खुश भी हूं। और यह वाकई बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन ये चैनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे किसी भी चीज पर स्वतंत्र रूप से रिसर्च करने और फिर उन आइडिया को फ्री में पब्लिक के साथ शेयर करने की सुविधा देता है और यह मेरा ड्रीम जॉब है। और यही सिद्धांत इस प्रोजेक्ट पर भी लागू होते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में दलदल में रहने वाला एक जहरीला कई सिरों वाला सांप था और इसे एलेने हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। और जब भी कोई इस राक्षस का एक सिर काटकर उसे मारने की कोशिश करता था तो उसे तुरंत उसकी जगह 2 सिर उगाते थे। और इस राक्षस ने कई पीढ़ियों को डर में जीने के लिए मजबूर कर दिया जब तक कि एक बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर व्यक्ति को इसे नष्ट करने का काम नहीं सौंपा गया। डोनाल्ड जे ट्रंप या हरक्यूलिस या जॉन विक, मुझे वाकई यकीन नहीं है। अगर इस तरह की परियोजनाओं से तकनीकी रूप से चीजों में सेंध लगाने या लोगों के IP या निजता को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाने की प्रेरणा मिलती है तो आपको समाधानों पर रचनात्मक रूप से काम करने और उस जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करने वाले बहुत से लोगों की आवश्यकता होगी। और इस तरह अगर आई कंपनियां एक रक्षात्मक तकनीक का रास्ता खोज लेती हैं तो उसकी जगह 2 और आ जाएंगी। और यह बताने लायक है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी नंबर प्लेट कानून प्रवर्तन अधिकारियों या मेरे पीछे गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा पहचानी या पढ़ी जा सकती है। मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि पुलिस अपने वाहनों पर लगे लाइसेंस प्लेट रीडर का उपयोग करती है। सार्वजनिक सड़क या पार्किंग स्थल पर 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम 2 टन के वाहन को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और विशेषाधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी अगर कानून प्रवर्तन एजेंसी लंबे समय तक फोन के जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक करना चाहती है या एक सेल फोन टावर से ज्यादा आपकी लोकेशन ट्रैक करना चाहती है तो उसके पास इसके लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए और एक निर्वाचित जज को इस बात पर सहमत होना होगा कि वारंट जारी करने के लिए यह एक अच्छा कारण है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कारपेंटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बहस की और फैसला सुनाया। टाइमस्टैम्प डेटा किसी व्यक्ति के जीवन की अंतरंग झलक देता है, न सिर्फ उसकी विशेष गतिविधियों का खुलासा करता है बल्कि उनके जरिए उसके पारिवारिक, राजनीतिक, पेशेवर, धार्मिक और यौन संबंधों का भी पता चलता है। ये लोकेशन रिकॉर्ड कई अमेरिकियों के लिए जीवन की निजता का खजाना होते हैं, इसलिए यह मानना वाजिब होगा कि बिना वारंट के आई से किसी की लोकेशन ट्रैक करना उनके चौथे संशोधन का उल्लंघन होगा, है ना? खैर, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, और अगर वे इस पर सहमत होते हैं कि यह संवैधानिक उल्लंघन है तो वे फ्लॉक सेफ्टी यूनिकॉर्न को उसके $8 बिलियन के अस्तबल से बाहर निकाल देंगे और सीधे उसके सिर पर गोली मार देंगे। और फ्लॉक सेफ्टी और उनके मुख्य निवेशक के $92 मिलियन के संयुक्त लॉबिंग प्रयास को देखते हुए शायद यह इतना भ्रामक नहीं है कि कोई भी इस पूरे संवैधानिक अधिकारों के मामले को ठीक क्यों नहीं करेगा। मेरा कहना है कि मुझे नहीं पता कि आई ट्रैकिंग सिस्टम को भ्रमित करने के लिए प्रतिकूल शोर का उपयोग करना आपके राज्य में कानूनी है या नहीं। इस कारण से यदि आप इस वीडियो या इस जानकारी से प्रेरित हैं, तो मैं सलाह और अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रेरणा का उपयोग इस प्रकार की तकनीक पर शोध करने के लिए करें, और मैं ये सलाह या अनुरोध नहीं करूंगा कि आप तुरंत अपनी लाइसेंस प्लेट पर स्क्रीन प्रिंट या मैच स्टिकर लगाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसका वे उदाहरण देते हैं। मैं आज इस वीडियो प्रायोजक, मेरे पैट्रियन सदस्यों के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना मैं आपको यह नहीं बता पाऊंगा कि यह वीडियो उन ईमेलों के लिए एकदम सही होता जो मुझे लगातार मिलते रहते हैं और मुझसे डिलीट मी या इनकॉग्निश जैसी सेवाओं के बारे में बात करने के लिए कहा जाता है, जो हर साल कुछ डेटा ब्रोकरों से आपकी जानकारी को हटाने के लिए डॉलर खर्च करते हैं। इन डेटा सुरक्षा सेवाओं के साथ समस्या यह है कि कोई संपूर्ण डेटा सुरक्षा सेवा नहीं है, क्योंकि उनके पास डेटा ब्रोकरों की पूरी सूची नहीं है जिससे वे संपर्क कर सकें, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका में डेटा ब्रोकर को केवल अपने सर्वर पर डेटा प्रदर्शित करना बंद करना होता है। इसलिए जब वे उस डेटा को कहीं और बेचते हैं या लाइसेंस देते हैं, जो कि डेटा ब्रोकर होने का एक उद्देश्य है, तो आपका डेटा फिर से प्रदर्शित हो सकेगा। वास्तव में इनकॉग्न का स्वामित्व नॉर्ड सिक्योरिटी या NordVPN के पास है, जिसके मार्केटिंग सहयोगियों ने मुझे बार बार प्रमुख बिंदुओं के साथ प्रायोजन प्रस्ताव भेजे हैं जिसमें उन्हें हैक प्रूफ बताया गया है, जबकि एक डेटा उल्लंघन में हैक होने के बावजूद उन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं को 1.5 साल तक इसका खुलासा नहीं किया। वैसे रिजेक्ट कन्वीनियंस ने इस पर एक शानदार वीडियो निबंध बनाया है जिसे मैं सुझाता हूं और मैं नीचे लिंक करूंगा। यूरोपीय संघ में हर जगह आपकी डेटा गोपनीयता को एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में माना जाता है और मान्यता दी जाती है। उनके सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन के लिए आवश्यक है कि आपके व्यक्तिगत डेटा को लॉग या एकत्र करने से पहले आपको स्पष्ट रूप से ऑप्ट इन करना होगा, और यह ब्रिटेन, जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, कनाडा, भारत, यहां तक कि चीन आदि में भी इसी तरह की सुरक्षा के लिए ढांचा प्रदान करता है, और इनमें से अधिकांश देशों में ये सुरक्षाएं क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर हैं, जिसका अर्थ है कि भले ही गूगल या फेसबुक अमेरिकी कंपनियां या सेवाएं हैं, लेकिन अगर वे उन देशों में अपना कारोबार जारी रखना चाहती हैं तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। इन जगहों पर लाइसेंस प्लेट रीडर को बाधित करने की कोई उचित आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, आपकी सोशल मीडिया गतिविधि, वॉलमार्ट में लाइन में खड़े होने पर आपके चेहरे के हाव भाव और भावनाएं उनके साथ बंडल नहीं की जा रही हैं और फिर कानून प्रवर्तन को पट्टे पर दी जा रही हैं। 1990 के दशक में इंटरनेट के उछाल के बाद से व्यक्तिगत डेटा ब्रोकरेज के खतरे हम सभी के लिए बहुत स्पष्ट हो गए हैं, और समाजशास्त्रियों से लेकर डेटा वैज्ञानिकों और चिंतित करदाताओं तक सभी ने विधायकों से उनकी रक्षा करने की गुहार लगाई, और 2016 में लोकतंत्र को प्रभावित करने और उसे नष्ट करने के लिए चुराए गए डेटा का इस्तेमाल किए जाने के बाद भी संघीय सरकार से कोई सार्थक सुरक्षा के बिना एक और दशक बीत गया। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम इसे स्वयं ही करेंगे। नमस्ते, मैं वीडियो एडिटिंग बेन बोल रहा हूँ। अगर आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं या किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए काम करते हैं या आप उनसे जुड़े हैं, और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो आपका शुक्रिया। मैं अपनी भावनाओं को लेकर बहुत स्पष्ट रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें समाधान न हो। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा या शायद निराशा तब मिली जब मैंने सोशल मीडिया पर फ्लॉक सीईओ का एक वीडियो देखा जिसमें वो फ्लॉक नोवा के बारे में बात कर रहे थे कि एक क्लिक पर एक केस सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मैंने अपनी निजी जिंदगी में कानून प्रवर्तन में काम करने वाले जितने भी लोगों से मुलाकात की है, वे सभी बेहद समर्पित और मेहनती रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कम ट्रेनिंग दी गई और उन्हें कम पैसे दिए गए। और जिस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, वहां के नजरिए से देखा जाए तो एक टेक सीईओ को अपने निजी और आर्थिक फायदे के लिए आपके काम को आसान बनाते देखना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं समझता हूं कि आप इस तकनीक में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका समुदाय सुरक्षित रहे, और मुझे लगता है कि यही एक नेक वजह है। मैं एक संक्षिप्त खुला पत्र SLP प्रस्ताव लिखने जा रहा हूं कि आपकी कानून प्रवर्तन एजेंसी इस तरह की तकनीक का उपयोग कैसे कर सकती है जो अनुकूलन योग्य, उन्नत, अधिक सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार्य परीक्षण साक्ष्य के अनुकूल होने के लिए एक ढांचे पर आधारित हो। और इसके अलावा अगर आपके पास इस वीडियो में देखी गई चीजों के बारे में कोई तकनीकी प्रश्न है तो ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और मैं उनका उत्तर देने या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की दिशा में निर्देशित करने में प्रसन्न हूं जो कर सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, मैं वास्तव में अपराध को सुरक्षित रूप से कम करने की आपकी क्षमता के साथ सहमत हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि सबसे प्रभावी फोरेंसिक तकनीक न्याय प्रणाली के पास हो, न कि उद्यम पूंजी फर्मों के पास। इस वीडियो में कई मोड़ आए और उम्मीद है कि आप में से कुछ ने कुछ सीखा या इसे सार्थक पाया। सरकारी नीलामी से लेकर घटकों और ALPR लाइसेंस तक हार्डवेयर के बीच ये काफी महंगा भी था, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह वीडियो मेरे पैट्रियन समर्थकों के बिना बनाना असंभव था, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस तरह की और भी सामग्री देखना चाहते हैं, साथ ही अल्ट्रासोनिक पक्षी रिकॉर्डिंग और अन्य वैज्ञानिक और अजीबोगरीब फील्ड रिकॉर्डिंग और ऑडियो एसेट और अप्रकाशित संगीत या संगीत और विज्ञान से भरे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर या हमारी मासिक गीत लेखन चुनौती तक पहुंच चाहते हैं तो कृपया हमसे जुड़ें। इसकी कीमत केवल $1 है। देखने के लिए धन्यवाद। बनाते रहें। अलविदा।